समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओ, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्व को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक में मैं हूं अतहर सईद और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो अतहर, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट अतहर सईद। And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business, tributes and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Campaigning is in full swing for remaining phases of Lok Sabha polls. Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi holds rallies in Telangana.
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रूसी सेना में लड़ाकों की भूमिका के लिए भारतीय नागरिकों की तस्करी से जुड़े मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया।
Air India Express cancels over 80 flights due to cabin crew shortage.
मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया।
And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to lock horns with Lucknow Super Giants this evening. And Athar, now it's time for a segment, Dateline Indian, which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about World Thalassemia Day. So what is thalassemia, Athar? What are the symptoms of thalassemia? Thalassemia can cause mild or severe anemia and other complications over time, such as iron overload. And symptoms of anemia include fatigue, trouble breathing, feeling cold, dizziness and pale skin. And World Thalassemia Day is observed on May 8 to spread awareness about thalassemia being a blood disorder, myths related to the disease and to help the patients lead a normal life. And the day also deals with the social stigma attached to the lives of individuals who are suffering from or living with this disease. And Athar, the efforts of doctors and medical professionals are also honored on this day for helping patients and bringing advancements. And the day is observed to encourage those who struggle to live with the disease. This day is a commemoration day in honor of all patients suffering from thalassemia and the parents who have never lost hope for life despite the burden of the disease, and also to all scientists who are doing hard work with dedication and trying to provide improved quality of life to the people with thalassemia across the globe.
बिल्कुल, आज विश्व थैलेसीमिया दिवस है और अभिषेक, थैलेसीमिया रोग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और ये बीमारी आनुवांशिक है, रिश्तेदारी के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है और ये रोग तब होता है जब शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन का उत्पादन करने में असमर्थ हो जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं में एक प्रोटीन जो पूरे शरीर में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और इस दिन के उद्देश्य की अगर बात करें तो अभिषेक, इसका उद्देश्य अनुवांशिक परीक्षण के महत्व पर जोर देकर और सभी के लिए न्याय संगत और गुणवत्तापूर्ण उपचार तक पहुंच की वकालत करके थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों का समर्थन करना है। और लक्षण की बात मैं भी बता दूं अपने सुनने वालों तक, थैलेसीमिया के लक्षण की अगर हम बात करें तो सर्दी जुकाम बना रहता है, कमजोरी और उदासी रहती है, सांस लेने में मरीज को तकलीफ होती है, कई तरह के संक्रमण होने लगते हैं और शरीर में एक तरह से पीलापन सा महसूस किया जाता है, दांत बाहर की तरफ निकलने शुरू हो जाते हैं और उम्र के मुताबिक शारीरिक विकास नहीं होता है।
Yes, so you have talked about the symptoms of thalassemia, Athar. So let's also talk about how to prevent thalassemia. Well, thalassemia patients are often more susceptible to infections due to their weakened immune system, and practicing good hygiene, getting vaccinated as recommended, and avoiding sick individuals can help prevent infections. And talking about the theme of World Thalassemia Day 2024, it is empowering lives, embracing progress, equitable and accessible thalassemia treatment for all. And Athar, Akashvani correspondent Sanjeev Jasrotiya spoke to director of RML and Professor of Medicines, Dr. Subhash Giri. Let's hear him.
थैलेसीमिया एक हेरिडिटरी बीमारी है। इसमें हीमोग्लोबिन के अंदर दो मेजर प्रोटीन होते हैं, एक अल्फा प्रोटीन होता है, एक बीटा प्रोटीन होता है। जिनमें अल्फा प्रोटीन की डेफिशिएंसी है उसको अल्फा थैलेसीमिया बोलते हैं, और जिसमें बीटा का होता है उसमें बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं। फर्दर क्लिनिकली थैलेसीमिया को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक माइनर थैलेसीमिया और एक मेजर थैलेसीमिया। माइनर थैलेसीमिया में कंपैरेटिवली सिम्टम्स कम होते हैं, उनका हीमोग्लोबिन यूजुअली 8 से 10 के बीच में आमतौर पर रहता है, और इन लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन या कोई दवाई की आमतौर पर जरूरत नहीं पड़ती। एक मेजर थैलेसीमिया है जिसके अंदर ब्लड का हीमोग्लोबिन काफी कम हो जाता है, और हीमोग्लोबिन कम होने का एक कारण इसमें ये रहता है कि एक तो हीमोग्लोबिन बनने की प्रॉब्लम रहती है, और दूसरा फिर जो बना होता है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन वो शरीर में जल्दी टूट भी जाता है। जिन पेरेंट्स को पहले से ही एक जीन का डिफेक्ट है, एक पेरेंट्स को, फादर को या मदर को, तो उस बच्चे में प्रोबेबिलिटी होती है कि वो माइनर या मेजर थैलेसीमिया से ग्रसित होगा। यदि दोनों पेरेंट्स को थैलेसीमिया की तकलीफ है तो वो ज्यादा गंभीर बीमारी होने की संभावना इनमें ज्यादा रहती है। जहां तक सिम्टम्स की हम बात करते हैं, थैलेसीमिया के अंदर बच्चा पीलापन उसके फेस पे लगता है, उसकी जीभ कम लाल होती है, और उसके हाथ की क्रीजेस भी कम्फर्टेबली कम पिंक रहती है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा डिफरेंट होता है, उसके साथ साथ इनका आमतौर पर स्प्लीन बढ़ जाता है और पेट में फुलावट नजर आती। कई बार इनके अंदर हार्ट के सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाते हैं, और पैरों पे सोजस आना, सांस का चढ़ना, अपने आम काम ना कर पाना, ये आमतौर पे लक्षण देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट की बात हम यदि करते हैं, मेजर थैलेसीमिया के लिए हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेगुलरली बच्चे में या अडल्ट में देने की जरूरत पड़ती है, और परमानेंट ट्रीटमेंट की बात करें तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से इसका इलाज संभव है। धन्यवाद।
So that was Dr. Subhash Giri talking to our correspondent Sanjeev Jasrotia on thalassemia and a bit more information at her on how thalassemia is treated. Thalassemia is an inherited blood disorder that affects your body's ability to produce hemoglobin and healthy red blood cells. Types include alpha and beta thalassemia. Thalassemia may cause you to experience anemia-like symptoms that range from mild to severe, and treatment can consist of blood transfusions and iron chelation therapy.
दरअसल थैलेसीमिया की अगर बात करें तो ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है अभिषेक, जिसमें मरीज के शरीर में हीमोग्लोबिन बन नहीं पाता, और जहां तक इससे बचने के उपाय की बात है, जागरूकता के माध्यम से इससे बचा जा सकता है। थैलेसीमिया को मुख्यतः दो वर्गों में अभिषेक बांटा जाता है, यानी एक थैलेसीमिया मेजर होता है और दूसरा थैलेसीमिया माइनर होता है। थैलेसीमिया मेजर की अगर बात करें तो ये बीमारी उन बच्चों में होने की संभावना ज्यादा होती है जिनके माता पिता दोनों के जीन्स में थैलेसीमिया होता है, जिसे थैलेसीमिया मेजर कहा जाता है, और थैलेसीमिया माइनर उन बच्चों में होता है जिन्हें प्रभावित जीन माता पिता दोनों में से किसी एक से प्राप्त होता है। और जहां तक इस बीमारी की जांच की बात है तो रक्त जांच के द्वारा लाल रक्त कणों की संख्या में कमी और उनके आकार में बदलाव की जांच से इस बीमारी को पकड़ा जा सकता है। अभिषेक,
यस, एंड वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। Another someone rightly said that thalassemia teaches us that the strength to endure is found in the heart, not just in the blood. And Athar, every drop of blood carries the strength and courage of resilience. So let's unite for a future free from the burden of thalassemia. Let's fight thalassemia together.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं की ओर जाने का और उनसे यही जानने का कि क्या कुछ विशेष है उनके पास। अभिषेक, इस क्रम में पहले हम महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र के लातूर जिले के डॉक्टर संदीपान जगदाले ने मतदाता जागरूकता को लेकर एक अनूठा प्रयास किया है। डॉक्टर संदीपान जगदाले महाराष्ट्र के पोवाड़ा लोक गायन के माध्यम से मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं अपने मुंबई संवाददाता से इस विषय में और विस्तार से।
महाराष्ट्र के लातूर जिले के दयानंद आर्ट कॉलेज के संगीत विभाग के प्रोफेसर और राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉक्टर संदीपन जगदाले ने मतदाता जागरूकता को लेकर एक अनूठा प्रयास किया है। डॉक्टर संदीपन जगदाले अपने छात्रों के साथ महाराष्ट्र के पोवाड़ा लोक गायन के माध्यम से मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ा रहे हैं।
जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, संविधान देवता वंदन करतो तुझे आता, डपावर था पतंत न्याता।
डॉक्टर संदीपन जग और उनके छात्रों ने मतदान करते समय प्रलोभन के आगे न झुकने और लोकतंत्र व्यवस्था में वोट के महत्व आदि बातों पर आधारित पोवाड़े बनाए हैं। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर संदीपन ने बताया कि वे ऐसे इलाकों में जाते हैं जहां पहले चुनाव में कम मतदान हुआ है और लाइव पोवाड़ा भी करते हैं।
तो जहां जहां वोटिंग कम हुआ है वहां उस इलाके में जाकर हम हमारे छात्र के साथ वहां गए हैं और वहां वोटिंग का परसेंटेज कैसे बढ़े इसके बारे में पतनाटते हैं और पोवाड़ा जो बैलेट जिसे कहते हैं हम इसके माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं और हम लाइव पोवाड़ा भी वहां कर रहे हैं जहां ढोलकी है हारमोनियम जो इंस्ट्रूमेंट है और जो छात्र है वो हमारे साथ गाते हैं और मुझे विश्वास है कि जरूर इसका जो भी फायदा है लाभ है वो हमारे राष्ट्र के लिए होगा।
डॉक्टर संदीपन को क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले पुरस्कार मिल चुका है और उससे प्राप्त धनराशि से उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाने के लिए एक वीडियो तैयार किया है। परिक्रमा के लिए मुंबई से मैं निवेदिता।
And now, in view of the upcoming Lok Sabha elections, we present you a capsule based on state profile, giving details of number of phases, date of polling, number of seats and other relevant facts by our correspondents. And in a series of key constituencies for Lok Sabha polls, today we bring you a report on Guntur parliamentary seat in Andhra Pradesh.
The Guntur Lok Sabha constituency stands as a prominent electoral region with 18 lakh voters, having women voters on slightly higher side. Guntur Lok Sabha has been a center of politics since independence. The giant personalities like Acharya N.G. Ranga and Kotta Raghuramayya represented the Lok Sabha for a long time. The Congress has won 12 times and TDP has won 4 times from 1952 to 2019. Currently, contesting from NDA alliance is Dr. Pemmasani Chandrasekhar from Telugu Desam Party. Meanwhile, the main rival, YSR Congress Party candidate Killaru Venkat Rosayya, is aiming to secure the support of the electorate with the hope on welfare schemes delivered by YSRCP government. The capital Amaravati asset remains an important electoral issue in the constituency. This time there are 46,300 first-time voters. The election commission is leaving no stone unturned in ensuring a smooth and transparent election on May 13. Allu Murli, Akashwani News, Vijayawada.
लोकसभा चुनावों के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन क्षेत्रों की श्रृंखला में आज हम महाराष्ट्र की पुणे संसदीय सीट की जानकारी दे रहे हैं।
महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना माना पुणे राज्य में मुंबई के बाद एक प्रमुख और ऐतिहासिक शहर है। इस बार शहरी मतदाताओं को बड़ी संख्या में आकर्षित करने के लिए पुणे शहर में 35 बड़ी हाउसिंग सोसाइटियों में स्वतंत्र मतदान केंद्रों की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। हालांकि निर्वाचन क्षेत्र में कुल 35 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन ये भाजपा शिवसेना महायुति महाविकास आघाड़ी और वंचित बहुजन आघाड़ी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। पुणे लोकसभा कांग्रेस की पारंपरिक सीट है। 2014 में सीट बीजेपी के पास जाने से पहले इस सीट से अब तक 10 कांग्रेस सांसद चुने गए हैं। बीजेपी के मुरलीधर मोहोळ महायुति के उम्मीदवार है, जबकि महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार कांग्रेस के रविन्द्र धंगेकर है। एक समय यह संसदीय क्षेत्र पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी के गढ़ के रूप में जाना जाता था, लेकिन 2014 में बीजेपी के अनिल शिरोड़े और फिर 2019 में गिरीश बापट ने इस सीट पर जीत हासिल की। पुणे लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र है। इसमें एनसीपी के अजीत पवार गुट के 1, बीजेपी के 4 और कांग्रेस एक विधायक है। इसे देखते हुए बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसलिए इस बार फिर कांग्रेस के लिए लड़ाई आसान नहीं है। मनोज क्षीरसागर, आकाशवाणी समाचार, पुणे।
इन अ सीरीज ऑफ की कंस्टिट्यूएंसीज फॉर लोकसभा पोल्स टुडे वी ब्रिंग अ रिपोर्ट ऑन आसानसोल पार्लियामेंट्री सीट इन वेस्ट बंगाल।
Asansol parliamentary constituency of West Bengal will go to polls on 30th May. There are 7 assembly segments in this constituency. 7 candidates are contesting in this election, including 2 independents. More than 17 lakh voters, including more than 8 lakhs female voters, are there in this constituency. Trinamool Congress has fielded Fringester Shatrughan Prasad Sinha from Asansol. BJP has fielded SS Aluwalia from Asansol. He is a veteran parliamentarian and politician. Congress supported left front candidate is Jahanara Khan. Asansol Lok Sabha constituency is in Pashim Vardhaman district. It is mainly a mining industrial area. There is a considerable chunk of Hindi-speaking population here. While BJP is attacking Trinamool Congress on the issue of corruption of ruling party and Sandesh Kali issue, Trinamool Congress is urging voters to reject BJP. Kalyan Laha, Akashvani News, Kolkata.
Now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
Today we remember Abad Bihari. He was a participant in revolutionary activities in Uttar Pradesh and Punjab.
He came in contact with Rajbihari Bose and participated in a plot to throw a bomb on Viceroy Harding on the 23rd of December, 1912. He also played a major role in the bomb explosion in Lawrence Garden, Lahore, on the 17th of May, 1913. Apart from this, he was deeply involved in writing and publishing the pamphlet Liberty to arouse nationalistic sentiments among the masses.
He was arrested in February 1940. He was charged for conspiring to kill Viceroy Harding and was also accused in bomb explosion at the Lawrence Garden, Lahore.
The brave son of the soil, Abad Bihari, was hanged in Delhi Central Jail on the 8th of May 1915. AIR News salutes the martyr.
We also remember revolutionary freedom fighter Bhai Balmukund. He was a cousin of another freedom fighter, Bhai Parmanand, who was a founder member of the Ghadar Party.
Bhai Balmukund was born in 1889 in Jhelum district, now in Pakistan. His family hailed from a famous martyr of Sikh history, Bhai Matidas, from whom they attached the epithet Bhai to their names. Balmukund's interest in the national movement was aroused when he was a student. After graduation, he took the profession of teaching, but his attachments to the national movement made him an ardent nationalist.
On December the 23rd, 1912, when Lord Harding was marching in state to Chandni Chowk, Delhi, a bomb was thrown at him. The Viceroy received minor injuries only, but his attendant was killed. Another bomb was thrown at some Europeans at Lawrence Garden, Lahore, 5 months later, on May the 17th, 1913. Following investigations, Balmukund was arrested from Jodhpur, where he was working as a tutor of the Jodhpur Maharaja's sons.
A trial was held at Delhi after the investigations of the bombings, and Balmukund was sentenced to death. He was hanged in the Ambala Central Jail on the 8th of May, 1915. We also remember freedom fighter and writer Ramesh Chandra Jha, who was born on the 8th of May, 1928. He wrote poems, ghazals, stories, novels, etc., and his works were filled with patriotism and inspiration to fight against the British. Ramesh Chandra Jha was born in 1925 in Motihari, Bihar. His father, Lakshmi Narayan Jha, was a well-known patriot and freedom fighter who fought against British rule and was arrested many times, including on the 15th of April 1917 when Mahatma Gandhi visited Champaran for the Satyagraha movement. Jha became a student leader and was dismissed from school for organizing protests against the British. He participated actively in the Quit India movement in 1942 and was jailed. While in jail, he studied Indian literature, and after independence, instead of joining politics, he chose writing as his career. Bharat Desh Hamara Hai, Jai Bharat, Jai Gandhi, Jai Bolo Hindustan Ki, Jawan Jagte Raho, Chalo Dilli and Premvada are his published works. Apne or Sapne, his non-fiction novel, is a literary journey of Champaran through which he traces the rich literary heritage of Champaran, Bihar. Ramesh Chandra Jha died on the 7th of April 1994. We salute the great nationalist writer.
In some business news today, benchmark equity indices ended flat today in volatile trade. Sensex slipped 45 points or 0.6 points to close at 73,466 points, while the Nifty remained unchanged at 22,302.50 points. In the forex market, the rupee ended at 83.52 rupees against the US dollar today.
और अब चलते हैं खेल के मैदान और जानते हैं वहां की हलचल. आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा. प्रतियोगिता में कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 20 रन से हरा दिया. और अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस. और श्रोताओं, इस कड़ी में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं अभिषेक
रविन्द्रनाथ टैगोर. एंड अतः टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर इन द होल ऑफ बंगाल. एंड अ बंगाली ब्राह्मण फ्रॉम कलकत्ता विद एंसेस्ट्रल जेंट्री रूट्स इन बर्धमान डिस्ट्रिक्ट एंड जेसोर, टैगोर रोट पोएट्री एज एन 8 ईयर ओल्ड. रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अ बंगाली पॉलीमैथ हु वॉज एक्टिव एज अ पोएट writer, playwright, composer, philosopher, social reformer, and painter during the age of Bengal Renaissance. He reshaped Bengali literature and music, as well as Indian art, with contextual modernism in the late 19th and early 20th centuries. Author of the profoundly sensitive, fresh and beautiful poetry of Gitanjali, he became in 1913 the first non-European and the first lyricist to win the Nobel Prize in Literature. Tagore's poetic songs were viewed as spiritual and mercurial, where his elegant prose and magical poetry were widely popular in the Indian subcontinent. He was a fellow of the Royal Asiatic Society, referred to as the Bard of Bengal. Tagore was known by sobriquets Gurudev, Kovi Guru, and Vishwakovi. His compositions were chosen by two nations as national anthems, India's Janagana Mana and Bangladesh's Amar Sonar Bangla. The Sri Lankan national anthem was also inspired by his work, and his song Banglar Mati, Banglar Jol has been adopted as a state anthem of West Bengal.
आज ही पुण्यतिथि है जिया फरीदुद्दीन डागर की। वो भारत के मशहूर ध्रुपद गायक थे। शानदार ध्रुपद गायक फरीदुद्दीन ने अपने दिवंगत भाई जिया मोहिद्दीन डागर, जो कि मशहूर रुद्र वीणा वादक थे, उनके साथ मिलकर ध्रुपद शैली के गायन को पुनर्जीवित करने में अहम भूमिका निभाई है। अभिषेक, ध्रुपद गायन की जब भी बात होती है तो ये भारत की बहुत ही प्राचीन गायन शैली है। जहां तक शास्त्रीय संगीत की बात है, भारत की बात है, तो उसको पुनर्जीवित करने का बहुत अहम काम किया है इन्होंने। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें तानसेन सम्मान दिया गया। 1994 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी वो सम्मानित हुए। उस्ताद फरीदुद्दीन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि उन्होंने संगीत के दामन में सबसे ज्यादा सितारे जड़े। उनके शागिर्दों में यानी शिष्यों में पंडित उमाकांत रमाकांत गुंदेचा, जो कि बहुत बड़ा नाम है जहां तक शास्त्रीय गायन का सवाल है, पंडित ऋतिक सान्याल, उदय भावलकर, पुष्पराज कोष्ठी आज ध्रुपद के ऐसे बेनजीर हीरे हैं जिनकी चमक ने दुनिया भर में ध्रुपद गायन को रोशन किया। अभिषेक,
यस, एंड डेनियल हर्नांडेज वाज बोर्न ऑन दिस डे 1996। इज एन अमेरिकन रैपर नोन प्रोफेशनली एज 6ix9ine एंड ऑल्सो एज तेकाशी 69। हिज म्यूजिक इज मार्क्ड बाय एन एग्रेसिव स्टाइल ऑफ रैपिंग, व्हाइल हिज पब्लिक पर्सोना इज कैरेक्टराइज्ड बाय हिज डिस्टिंक्टिव रेनबो कलर्ड हेयर एंड मेनी टैटूज।
¿Qué tengo que hacer para que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer. Fuiste mi nena.
अभिषेक, हम जिया फरीदुद्दीन डागर की बात कर रहे थे, उनके गायन को सुने बगैर बात अधूरी रहेगी, क्योंकि ध्रुपद ऐसी दुर्लभ गायकी है कि उसका नमूना हमारे सुनने वालों तक पहुंचना चाहिए। आइए सुनते हैं जिया फरीदुद्दीन डागर की आवाज में ये ध्रुपद गायन का एक छोटा सा नमूना। बात जन्म दिवस की, तो आज जन्म दिवस है महान गायिका गिरिजा देवी जी का। गिरिजा देवी भारत की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका रही हैं। उन्हें ठुमरी की रानी भी कहा जाता है। उनका संबंध गायकी के बनारस घराने से है। गायकी के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय तानसेन राष्ट्रीय सम्मान, पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। गिरिजा देवी संगीत नाटक अकादमी द्वारा भी सम्मानित की जा चुकी है। गिरिजा देवी के प्रारंभिक संगीत की बात करें तो गुरु पंडित सरयू प्रसाद मिश्र जी ने 9 वर्ष की आयु में उनको सिखाने का क्रम शुरू किया, और 9 वर्ष की आयु में पंडित श्रीचंद्र मिश्र से उन्होंने संगीत की विभिन्न शैलियों की शिक्षा प्राप्त की। गिरिजा देवी जी की खनकती हुई आवाज जहां दूसरी गायिकाओं से उन्हें अलग बनाती है, वहीं उनकी ठुमरी हो, कजरी हो या चैती हो, उसमें बनारस के रंग खास तौर पर नजर आते हैं। तो आइए उनके गायन का एक नमूना लेते हैं।
And Enrique Iglesias was born on this day in 1975. He's a Spanish singer and songwriter. He started his recording career in the mid-1990s on the Mexican label Fonovisa and became the best-selling Spanish language act of the decade. By the turn of the millennium, he successfully crossed over into mainstream English language market. Let's listen in to a hit track of his.
Súbeme a la radio, que esta es mi canción. Siente debajo que va subiendo. Traeme alto, que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme a la radio, que esta es mi canción.
Sir David Frederick Attenborough was born on this day in 1926. He's a British broadcaster, biologist, natural historian and writer, best known for writing and presenting in conjunction with the BBC Natural History Unit, the 9 Natural History Documentary Series, Forming the Life Collection, a comprehensive survey of animal and plant life on Earth.
और आज ही जयंती है स्वामी चिन्मयानंद की। वे भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतक और वेदांत दर्शन के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे। इनका मूल नाम बालकृष्ण मेनन था। उन्होंने सारे भारत में भ्रमण करते हुए अभिषेक देखा कि देश में धर्म संबंधी अनेक भ्रांतियां फैली हुई हैं। उनका निवारण कर शुद्ध धर्म की स्थापना के लिए स्वामी चिन्मयानंद जी ने गीता ज्ञान यज्ञ प्रारंभ किया और 1953 में चिन्मय मिशन की स्थापना की। स्वामी चिन्मयानंद के प्रवचन बड़ी ही तर्कसंगत और प्रेरणादायी हुआ करते थे।
Yes, and Luis Rimo de Maria Bernardo Fernandez was born on this day in 1953, known professionally as Rimo Fernandez. He's a Portuguese singer, actor and musician. He is known as the pioneer of Indian pop music, performing pop, rock, Indian fusion, and is also a film playback singer. His musical work fuses many different cultures and styles that he was exposed to as a child in Goa and in his later travels around the world. Let's listen in to his rendition of the flute song. Yes, and the Shiny Kurisingal Wilson was born on this day in 1965. She's a retired Indian athlete. She has been a national champion in 800 meters for 14 years. Shiny Abraham Wilson, or Shiny Abraham, represented India more than 75 times in international competitions. And also Atahar Harry S. Truman was born on this day in 1884. He was the 33rd president of the United States, serving from 1945 to 1953. A member of the Democratic Party, he previously served as the United States Senator from Missouri from 1935 to 1945 and briefly as the 34th President in 1945 under Franklin D. Roosevelt. Assuming the presidency after Roosevelt's death, Truman implemented the Marshall Plan in the wake of World War II to rebuild the economy of Western Europe. He established both the Truman Doctrine and the NATO to contain the expansion of Soviet communism.
और श्रोताओ, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए अतहर सईद और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार।